आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 17, जो आपकी 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान की बुक का चैप्टर है। उसका नाम है मुगल साम्राज्य का पतन और 18वीं शताब्दी का भारत। तो अब मेनली इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं वो ये है कि किस तरह से जो मुगल एम्पायर, जो इतना बड़ा एम्पायर था, उसका डाउनफॉल हुआ और उसके इम्पॉर्टेंट रीजंस क्या थे, मतलब कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से एक इतना बड़ा साम्राज्य जो पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ था उसका पतन हो गया। और अगर हम इतने बड़े एम्पायर की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो एक साथ या फिर किसी एक रीजन की वजह से ख़त्म हो जाए, उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, कुछ अंदरूनी कुछ बाहरी, तो हर तरह के फैक्टर्स जो हैं वो उसके डाउनफॉल में वर्क करते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि 18th सेंचुरी मतलब कि 18वीं शताब्दी में आसपास का जो हमारा देश था उसमें सामाजिक और इकोनॉमिक कंडीशंस और बाकी सारी चीज़ें किस तरह की थी, किस तरह का लोगों का रहन सहन था, क्या क्या चीज़ें बदल रही थी, किस तरह का एनवायरनमेंट था और किस तरह भारत अलग अलग कॉलोनियल स्टेट जो है उनके कंट्रोल में आता जा रहा था और किस तरह से एक डिवीजन होता जा रहा था अलग अलग लेवल पे, और जो बाहरी ताकतें थी मतलब कि जो बाहरी कंट्रीज थी, जो कॉलोनियल नेशंस थे, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गई, डच हो गया, पुर्तगाल हो गए, तो वो सब किस तरह से इंडिया पे राज करने के लिए आगे आ रहे थे। तो इस पूरे चैप्टर में हम ये बात करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा वो ये कवर करेगा कि कौन कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से जो मुगल साम्राज्य जो है इतना बड़ा था वो औरंगजेब के डेथ के बाद कितनी जल्दी उसका पतन हो गया। ऐसा नहीं है कि औरंगजेब की डेथ के बाद डायरेक्टली जो औरंगजेब था तो वो लास्ट इम्पोर्टेंट रूलर माना जाता था, जैसे कि सबसे पहले हुमायूं, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, तो ये तो कुछ इम्पोर्टेंट रूलर्स थे ही जो मतलब बहुत माने जाते हैं मुगल एम्पायर के, जिनके पीछे हम कहते हैं कि इनके वजह से मुगल साम्राज्य जो अपने इतने बड़े चरम पे था वो पहुंचा था। लेकिन औरंगजेब जब आया तो औरंगजेब के आने के बाद हमने ये देखा कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो औरंगजेब ने कुछ डिसीजंस ऐसे लिए जिनका इफेक्ट जो था मतलब उसका परिणाम जो था वो उसकी मृत्यु के बाद देखने को मिला, और उसके टाइम में भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी जिससे ये सिद्ध हो रहा था कि आगे आने वाले टाइम में ये जो मुगल एम्पायर है ये बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। तो सबसे पहले बाबर आया था, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। औरंगजेब जो था उसकी डेथ हुई थी 1707 के अंदर, और 1707 के बाद जो 1857 की लड़ाई है लगभग तब तक मुगल साम्राज्य ही था। कहने को लिए तो एक जो हेड कहते हैं वो मुगल साम्राज्य का ही था, रूलर जो था वो मुगल ही था, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो जो रूलर थे वो इतने स्ट्रॉन्ग, इतने कैपेबल नहीं थे कि वो पूरे इंडिया को एक जुट बांध कर रख सके। और जब 1730 के अंदर अलाहाबाद संधि हुई, इस संधि के बारे में बाद में पढ़ेंगे, तो ये संधि ऐसी थी जिसकी वजह से ये सिद्ध हो गया था कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो मतलब कि अंग्रेज हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गए थे इस टाइम तक। जो हमारे ब्रिटिशर्स के अंडर जितने भी जैसे कि शाह आलम, बहादुर शाह जफर, इनके बारे में हम देखेंगे कि ये जो मुगल के जो ये राजा थे इन कोई इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं रह गई थी, और ये सिर्फ डिपेंड हो गए थे जो बाहर से जो लोग आए थे उनके ऊपर, मतलब कि जो ब्रिटिशर्स आए थे उनके ऊपर दे वर टोटली डिपेंडेंट, और इनकी खुद की इकोनॉमी, पॉलिटी, हर कंडीशन जो थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो हम वो बहुत सारे अलग अलग तरह के पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल रीजंस हैं जिसकी वजह से मुगल एम्पायर का डाउनफॉल हुआ। तो नाउ वी विल सी ऑल दोज रीजंस। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि जो आसपास के जो छोटे छोटे एम्परर्स भी नहीं कह सकते उनको, जो सबॉर्डिनेट थे जैसे कि जाट, सतनामी, सिख, तो ये जो सबॉर्डिनेट जो लोग थे, जो सबॉर्डिनेट रूलर्स थे और इम्पोर्टेंट जो हेड था वो था मुगल, मतलब मुगल का जो हेड, मुगल रूलर। अब दिक्कत ये आई कि जब वो वीक हो गया औरंगजेब के डेथ के बाद, आया था बहादुर शाह वन, तो बहादुर शाह वन के टाइम पीरियड में सिचुएशन ये थी कि औरंगजेब ने कुछ पॉलिसीज ऐसी अडॉप्ट की थी जिसकी वजह से ये जो जाट सतनामीज और सिख हो गए, तो ये जो लोग थे ये बिल्कुल एकदम अगेंस्ट हो गए थे मुगल एम्पायर के, एंड दे वर नॉट सपोर्टिंग द एम्परर। अब जब राजा को कोई सपोर्ट नहीं करेंगे जो छोटे छोटे आसपास के जो सबॉर्डिनेट इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, तो एम्पायर तो ऑब्वियसली डिक्लाइन होगा ही ना, क्योंकि आसपास के किसी भी लोगों से उनको सपोर्ट तो नहीं मिल रहा, बल्कि वो उसके अगेंस्ट एक रिबेलियन शुरू कर रहे हैं, मतलब एक विद्रोह शुरू कर रहे हैं। तो जाट अपना अलग आंदोलन कर रहे थे भरतपुर साइड में, जो पंजाब साइड है वहाँ पे अलग आंदोलन चल रहा था। तो उसके वजह से कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपना खुद का ही करेंसी स्टार्ट कर दी, खुद के सिक्के डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू कर दिए, और वो मुगल एम्परर जो था उसकी इम्पोर्टेंस बिल्कुल ख़त्म कर दी कि हम इस जो राजा है इस राजा को मानते ही नहीं है, हम इस हेड को मानते ही नहीं हैं। तो उनमें से एक था पंजाब में बंदा बहादुर। तो उन्होंने क्या किया था कि अपने खुद के सिक्के चलाने शुरू कर दिए, जाट जो थे वो भरतपुर साइड में अपना रूल स्टेब्लिश करने लग गए। तो इस तरह से जो रीजनल पावर्स थी वो बहुत स्ट्रांग हो गई थी, और जो हेड था दिल्ली के अंदर वो राजा वो बहुत कमज़ोर हो गया था और वो उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो ये सब हो रहा था औरंगजेब की डेथ के बाद की बातें हैं ये, और औरंगजेब के टाइम पे भी, क्योंकि औरंगजेब ने कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट की थी जिसकी वजह से सब रिबेल पे उतर आए थे। ठीक है, तो जो लेटर मुगल्स थे उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से इनको हम कंसिडर करके या फिर मना बुझा के मना सके, ये हमारे साथ वापस आ सके। तो बंदा बहादुर ने कोशिश भी की कि मतलब अगर गुरु गोविंद सिंह को हम मुगल सर्विसेज में वापस ले लें तो शायद सिख समुदाय के जो लोग हैं वो हमारे साथ वापस आ जाए। तो उन्होंने उनको वापस सर्विस में लिया। उसके बाद फिर उन्होंने मराठास के साथ भी संधि की, क्योंकि मराठास जो थे वो साउथ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे और अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए थे, क्योंकि जब से पेशवा मतलब मराठा का जो मेन हेड होता है वो पेशवास थे, जो उनको मेजर रोल प्ले करते थे आगे पहुंचाने के अंदर, तो उनका भी सपोर्ट चाहिए था उनको। तो किसी ना किसी तरह मुगल्स ये चाह रहे थे कि हमें अगर इन आसपास की लोगों का सपोर्ट मिल जाए, आसपास के जो लीडर्स हैं इनका सपोर्ट मिल जाए, जिसमें से एक मराठा हो गए, एक जाट हो गए, सतनामीज हो गए, उसके बाद फिर अगर हम देखें पंजाब साइड में तो फिर बंदा बहादुर जैसे लोग हो गए, तो इन सब का सपोर्ट वो चाह रहे थे। लेकिन जब एक ये होता है कि इम्पोर्टेंट हेड ऑफ द फैमिली वीक हो जाता है, तो फिर सब लोग अपना अपना व्यू पॉइंट रखने लग जाते हैं और अपने अपने तरीके से अपनी चीज़ों को पेश करते हैं कि हम इस तरह से रूल करेंगे, हम इस तरह से रूल करेंगे। तो इंडिया काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। और सेकेंडली अगर हम ये देखें तो हुआ ये था कि जो जितने भी ये नए रूलर्स थे, मतलब कि बहादुर शाह या उसके बाद जहानदार शाह, फारूक शियार, मोहम्मद शाह को तो बोलते हैं मोहम्मद शाह रंगीला, तो इनके नाम ऐसे क्यों पड़े? तो जैसे कि मोहम्मद शाह का नाम था मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि हुआ ये था उस टाइम में कि जो पहले के जो रूलर थे वो तो अपने काम को लेके बहुत डेडिकेटेड थे, उनकी आर्मी बहुत स्ट्रांग थी, वो खुद बहुत बड़े योद्धा थे। लेकिन ये जो रूलर थे इनका तो बस ये था कि ऐशो आराम करो, आराम की ज़िंदगी बिताओ, और जो भी रुपए पैसे प्रजा से मिलते हैं उनको अपनी अयाशी में उड़ा दो। तो इनका बिल्कुल ध्यान नहीं था कि वो अपने काम को समझे, काम के प्रति डेडिकेशन से मतलब उसको करें। लेकिन नहीं, उनका काम सिर्फ ये था कि जवाहरात, हीरे जवाहरात आए, उनको खरीदना, पहनना, अच्छा ओढ़ना, खाना पीना, और सिर्फ अपने बारे में सोचना। तो अयाशी वाली ज़िंदगी जीते थे। तो नैतिक पतन हो चुका था उस टाइम जो इम्पोर्टेंट राजा थे उनका। तो जो मुगल साम्राज्य था वो इसलिए एक इम्पोर्टेंट लीडर की फेलियर की वजह से डिक्लाइन हो गया, मतलब कि इम्पोर्टेंट लीडर जो था वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझ रहा था, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बजाय वो सिर्फ एक इन्जॉयफुल इन्वायरमेंट में रहना चाहता था, ना कि एक वॉर वाली सिचुएशन में कि मतलब अगर युद्ध होगा तो वो युद्ध के लिए तैयार रहें और अपने आप को प्रिपेयर करें या मेहनत करें। नहीं, उनका काम सिर्फ ये था कि जो रुपए आ रहे हैं वो खुद के ऊपर उड़ाओ और ऐश की ज़िंदगी जियो। ना एग्रीकल्चर का उन्होंने डेवलपमेंट किया, ना प्रजा के बारे में कुछ सोचा, ना आसपास की जो देश थे जिनसे, आसपास के जो और राज्य थे जिनसे उनको नुकसान पहुंचा सकते थे उनको, या फिर जो उनको उनके ऊपर आक्रमण कर सकते थे, तो उनसे भी उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन करनी जरूरी नहीं समझी। और यही एक रीज़न था जिसकी वजह से जो एक्सटर्नल पावर्स थी वो इतनी पावरफुल हो गई कि उन्होंने इंडिया के अंदर आक्रमण कर दिए। तो उसी की वजह से ये हुआ था कि नादिर शाह जो था एक बाहर का रूलर था, तो उसने जो है वो मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में अटैक किया इंडिया पे। और जब उसने अटैक किया इंडिया पे, तो वो इंडिया पे अटैक करने के बाद इंडिया से बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट महंगी महंगी वस्तुएं थी वो लेके चला गया। तो इससे ये सिद्ध होता है कि मतलब अगर राजा पावरफुल नहीं होगा तो बाहर की ताकतें पावरफुल हो जाएंगी और वो आक्रमण करके आपके इंडिया का खजाना लूट के चली जाएंगी। तो उसी तरह से नादिर शाह ने जब इन्वेजन किया तो उसने कोहिनूर डायमंड जो बहुत फेमस है वो ले गए। उसके बाद कोहिनूर डायमंड जो था वो पंजाब में राजा रंजीत सिंह के पास था, फिर रंजीत सिंह से ब्रिटिशर्स ने ले लिया, तो अब वो फाइनली ब्रिटिशर्स के पास ही है जो कोहिनूर है वो। और अभी बीच में काफी जिद बहस चलती रहती है इस बात को लेके कि कोहिनूर इंडिया का है, इंडिया को वापस दो। लेकिन भाई इंडिया के जो रूलर थे वो इतने वीक थे कि उन्होंने एक्सटर्नल पावर्स को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी और इतनी प्रोटेक्शन नहीं रखी अपनी, जिसकी वजह से वो इंडिया में आए और आपका वो लेके चले गए। और उसके अलावा एक और चीज वो लेके गए थे, वो था पीकॉक थ्रोन। पीकॉक थ्रोन जो है वो शाहजहां ने अपनी गद्दी एक तरह से मतलब जिस सिंहासन पे वो बैठता था वो था, और उसके ऊपर बहुत सारे सुंदर हीरे जवाहरात तो ये सब लगे हुए थे, तो बहुत सुंदर था वो और बहुत ही महंगा और बहुत ही प्रेशियस था। और एक तरह से माना जाता है कि वो मुगल एम्पायर की शान का प्रतीक था, क्योंकि एक बहुत बड़े लेवल पे उसकी सुंदरता की और उसकी मतलब जिस तरह से उसको बनाया गया था उसका बखान किया हुआ था। और शाहजहां के टाइम की बात है तो शाहजहां का टाइम का तो हर चीज इतनी फेमस है, देखो ताजमहल देख लो, लाल किला देख लो, कुछ भी देख लो। तो उस टाइम में जब अपने चरम सीमा पे पहुंचा हुआ था एम्पायर, तो उसकी इम्पोर्टेंस झलकाता था वो ताज, मतलब वो जो सिंहासन था वो। तो नादिर शाह के इन्वेजन में वो भी ले गए। उसके बाद फिर मोहम्मद शाह रंगीला के बाद आए थे अपने अहमद शाह। तो अहमद शाह के टाइम पे हुआ ये था कि नादिर शाह ने पहले इन्वेजन किया था, उसके बाद फिर अहमद शाह अब्दली ने इन्वेजन किया। वो एक जनरल था, मतलब कि एक इम्पोर्टेंट पोजीशन दे रखी थी नादिर शाह ने उसको जनरल की, अफगानिस्तान का रूलर था। तो उसने भी फिर से अटैक किया। तो इस चक्कर में हुआ ये कि मतलब एक्सटर्नल पावर्स पावरफुल होती गई, बार बार इंडिया पे अटैक होते रहे, इंडिया पे अटैक होते रहे, तो इंडिया की जो इकोनॉमी थी। तो अब हमने ये देख ही लिया है कि जो रूलर थे वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राविजेंट हो गए थे, रुपए पैसे उड़ाने लगे थे, उसकी वजह से काफ़ी जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी मुगल एम्पायर के अंदर वो नेगेटिवली अफेक्ट हो गई थी। तो नैतिक पतन तो था ही, ऊपर से हम ये देखते हैं कि जो उनके अमीर थे, अमीर मतलब जो सरदार थे, मतलब कि जो उनके इम्पोर्टेंट जो हेड था, मतलब पहले तो होता है अपना एक किंग रूलर जो है, उसके बाद नीचे उसके सबॉर्डिनेट जो मिनिस्टर्स होते हैं तो उनको अमीर बोलते थे। तो वो जो थे वो अब अपने आप को इम्पोर्टेंट मानने लग गए और वो ये मानने लग गए कि अब हम भी जब राजा ही काम नहीं कर रहा है तो फिर हम भी क्यों ही मेहनत करें। तो होता ये था कि जो अमीर थे पहले वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट लोग थे, जैसे कि आज के सिविल सर्वेंट्स हैं, ऑफिसर्स जो होते हैं वो। तो वो लोग पहले हम देखते थे कि अकबर शाहजहां और इनके टाइम में जो वो थे वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लोग हुआ करते थे। वो राजा को सही तरह के सजेशंस दिया करते थे, बताते थे कि क्या सही है क्या गलत है, किस तरह से उनको आगे काम करना चाहिए, क्या चीज़ बेटर है क्या नहीं है। लेकिन अब वो भी बिल्कुल भी जो कामकाज था एम्पायर का उसमें ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनको भी ये लग रहा था कि जब राजा ही फालतू में नहीं सोच रहा है तो हम भी क्यों सोचें। और ऊपर से फिर उनको ये भी था कि वो अगर किसी रीजन में पावरफुल थे तो उनको ये लग रहा था कि हम इस रीजन में अपना एक अलग ही एम्पायर इस्टेब्लिश कर देंगे। तो वो भी मतलब एक तरह से जमीन जायदाद और इन सब के उसमें आकर, आगोश में आकर एकदम ऐश आराम की जिंदगी जीने लगे और सपने देखने लगे अपने एक अलग एम्पायर को इस्टेब्लिश करने के लिए। उसके बाद एक और चीज़ हम देखते हैं कि उस टाइम द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, जैसे कि आज हम देखते हैं, हम अपने आप को मानते हैं कि हम इंडियन हैं, हमारी एक आइडेंटिटी है कि हम भारतवासी हैं। तो एक कॉमन आइडेंटिटी है, एक आइडिया है हमारे दिमाग में कि हमारी कंट्री है हमारे लिए, जैसे कि अब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है या कुछ भी होता है तो हमारे दिमाग के अंदर ये चीज़ चलती रहती है कि भाई हमारा देश जीतना चाहिए, तो वो देशभक्ति वाली भावना है। लेकिन उस टाइम पीरियड में हम देखते थे कि ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम पीरियड में सब अपने अलग अलग रीजन थे और सब अपने रीजन तक ही सीमित थे, उनको ऐसा नहीं था कि वो अपने आप को एक भारतवर्ष या इंडिया या फिर ऐसा कुछ माने, तो एक यूनिटी वाली चीज तो थी ही नहीं उस टाइम पीरियड में। और जब यूनिटी वाली चीज थी नहीं तो लोगों का ऐसा नहीं था कि वो अपने आप को एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी लेके देखे। कुछ अपने आप को जाट थे तो वो अपने जाट रूलर को मानते थे, और सिख थे वो उनको मानते थे। फिर जब हम मराठों की बात करें तो फिर शिवाजी जो था उसने मराठा साम्राज्य को इतना स्ट्रांग बना दिया था कि वो बिल्कुल ही मुगल साम्राज्य के अगेंस्ट एक पैरेलल चीज खड़ी कर दी थी साउथ के अंदर कि भाई जो मराठा है वो मुगल जो है वो उनके बिल्कुल अपोजिट है। और जो सबसे बड़ा फैक्टर इंडिया को डिवाइड करने में काम आया था वो ये था कि जो औरंगजेब की पॉलिसी थी हिंदू सिख जाट इन सब को लेकर और मुसलमानों को लेकर, वो बहुत ही अलग थी। तो जिस तरह से अकबर जो था, अकबर ने तो एक तरह से एक ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश किया था जिसमें हिंदू मुस्लिम आराम से भाईचारे से रह सके। वो हर रिलीजन को इम्पोर्टेंस देता था, हिंदू रानियों से उसने शादियां भी की, उसके बाद फिर उनके जो कर थे तीर्थ कर थे या और भी जो चीज़ें थी वो माफ़ किया, और फिर इबादत खाना इस्टेब्लिश किया जिसमें अलग अलग तरह के रिलीजन के लोग आकर आपस में बातचीत करते थे, देखते थे कि कौन से रिलीजन की कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ हमें ले लेनी चाहिए। तो अकबर जो था वो सिर्फ एक उलेमा या फिर सिर्फ मुस्लिम जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे या मुस्लिम साम्राज्य की जो रिलीजियस लाइफ थी उससे प्रेरित नहीं था। वो सारे धर्मों को इम्पोर्टेंस देता था, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई भी हो। लेकिन जब हम औरंगजेब की बात करते हैं तो औरंगजेब जो था वो हिंदुओं के बिल्कुल पक्ष में नहीं था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि हिंदू के जो टेम्पल्स हैं वो इस्टेब्लिश हों। वो टेम्पल्स तोड़वाने के हुक्म दे देता था, टेम्पल तोड़वाने का भी हुक्म नहीं देता था। तो वो हिंदुओं को जो पॉलिसीज थी वो बिल्कुल उनके अगेंस्ट थी, उनके लिए बहुत ही क्रूर राजा था वो हिंदुओं के लिए। तो जब उसने इस तरह का हिंदू मुस्लिम का डिविजन कर दिया तो हुआ ये कि लोग आपस में लड़ पड़े। पहले तो ये था कि हिंदू मुस्लिम आपस में प्यार से साथ रहते थे, लेकिन अब ये था कि हिंदू अपने आप को अलग मानते थे, मुस्लिम अपने आप को अलग मानते थे। तो इसी की वजह से ये था कि जो शिवाजी थे, जो साउथ में शिवाजी मराठा रूलर इम्पोर्टेंट गद्दी उन्होंने एस्टेब्लिश कर दी थी वहां पे, तो उन्हों का मानना ये था कि जो मुगल हैं वो बाहर से आए हैं और वो एक फॉरेनर हैं, और ऊपर से वो अगर रहे तो हम हिंदू जो हैं वो एक्सटेंट हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो उनने अपना साम्राज्य एस्टेब्लिश करने के लिए हिंदुओं को हमेशा कुचला ही है। तो इसलिए शिवाजी जो थे वो हिंदूज को सपोर्ट कर रहे थे, औरंगजेब मुस्लिम्स को सपोर्ट कर रहा था। तो औरंगजेब तो सिखों के भी अगेंस्ट था, उसने उनको भी सपोर्ट नहीं किया, जाटों को भी सपोर्ट नहीं किया, गुरु गोविंद सिंह के भी अगेंस्ट हो गया था वो। तो उस तरह से उसने सारे रिलीजन को आपस में डिवाइड कर दिया। तो इसकी वजह से एक जो यूनिटी वाली चीज थी वो नहीं आ पाई थी। उसके बाद अगर हम देखें इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर, तो इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर मतलब कि अगर हम देखें कि खजाने जो थे वो कहाँ से आते थे। पहले के टाइम में इकोनॉमी का सोर्स या तो ये था कि जमीन में जो उगेगा वो उस पर जो कर लगेगा वो राजा लेगा और राजा की तिजोरी में वो चीज जाएगी। दूसरा ये कि अगर वो दूसरे किसी देश पर या दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है तो वहां से जो लूट वो लेके आएगा वो उसके कोष के अंदर चली जाएगी। अब दिक्कत ये आ रही थी कि एक तो राजा पावरफुल नहीं था, राजा पावरफुल नहीं था तो जो आर्मी थी वो भी उसके अंडर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही थी। और दूसरी बात ये कि आर्मी को चलाने के लिए घोड़े ऊंट और हाथी इन सबको मेंटेन करने के लिए रुपए चाहिए होते हैं। अभी रुपए तो तब आएंगे ना जब वो तरीके से उसको खर्च करेगा, और खर्च करने से पहले ये सोचेगा कि आगे हम और इनकम कैसे जनरेट करेंगे, मतलब कि कैसे हमारे खजाने भरे जाएं। तो यहाँ पे तो जो मुगल राजा थे उनको रुपए उड़ाने से फुर्सत नहीं थी, वो तो एक बहुत ही लग्जूरियस लाइफ जी रहे थे, मतलब कि बहुत ही शानो शौकत वाली जिंदगी जी रहे थे। तो इसमें दिक्कत ये हुई कि खजाने से रुपए जाते जा रहे थे और आने का कोई एक इम्पोर्टेंट जो सोर्स होता है जो कि दूसरे राज्य पे आक्रमण करना था वो तो हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो राजा इतने पावरफुल थे ही नहीं कि वो दूसरे राज्य पे आक्रमण कर सके। और आर्मी में लोग इसलिए नहीं ज्यादा सक्सेसफुल हो पा रहे थे क्योंकि आर्मी में ये होता है कि अब सोल्जर्स तो वर्क तभी करेंगे ना जब उनको रुपए दोगे या फिर कुछ दोगे तुम। अब ना तो सोल्जर्स को रुपए मिल रहे थे, ना जो बेचारे किसान थे उनको प्रॉपर खाद बीज और उसके लिए हेल्प कर रहा था राजा कि भाई वो कुएं खुदवा दे, कैनाल बनवा दे ताकि उनको पानी की जब शॉर्टेज हो तो पानी मिल जाए। तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर भी ढंग से वर्क नहीं कर रही थी। तो देखो, एग्रीकल्चर ढंग से वर्क नहीं कर रही थी, इसकी वजह से अनाज की कमी हो गई। अनाज की कमी हो गई तो ऑलरेडी जो किसान था वो इतना डिस्ट्रेस हो गया कि वो कर दे ही नहीं पा रहा था। तो एक तो कर नहीं दिया जा रहा है किसान से, और ऊपर से फूड शॉर्टेज अलग से हो गई। तो अभी हम सिर्फ ये वाली चीज देखेंगे कि देखो स्टार्टिंग में हुआ क्या। राजा जो था, राजा ने ध्यान नहीं दिया कि किस तरह से हम दूसरे राज्यों पर आक्रमण करके उनकी जमीन जायदाद या फिर जो भी हीरे जवाहरात है वो लूट कर लेके आए। तो वो जब राजा वीक था तो उसकी वजह से वो चीज भी नहीं हो पाई। दूसरी चीज हम देखते हैं कि राज्य में जो किसान थे वो गरीब होते जा रहे थे। वो इसलिए गरीब होते जा रहे थे क्योंकि उनको जो राजा हेल्प करना चाहता था और जो राजा हेल्प करता था आज तक, वो हेल्प नहीं कर रहा था। तो उसकी वजह से वो गरीब होते जा रहे थे। उनके पास ढंग से खेती करने के भी कोई साधन नहीं थे उपलब्ध, और ऊपर से फिर वो उनसे कर भी बहुत ज्यादा लेने लगे थे। मतलब कि और ज्यादा से ज्यादा रुपए उन किसानों की जो उपजा होती थी, जो उपज करते थे, वो उनसे भी वो लेके अपनी तिजोरी में भरने लगे और अपनी एक रंगीन जिंदगी जीने के लिए किसानों को प्रताड़ित करने लगे। तो जब किसानों को प्रताड़ित करने लगे तो किसान वैसे ही दुखी हो गए उनसे, और ऊपर से और गरीब हो गए। और फिर तीसरा हम ये देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या पड़ा। इसका इफेक्ट ये पड़ा कि भुखमरी फैल गई। फिर भुखमरी क्यों फैली? क्योंकि देखो, हमने देखा ही अभी कि जो आजकल हम देखते हैं ट्यूबवेल वगैरह और ये सारी चीजें, जो नई नई फैसिलिटीज हैं, ये तो थी नहीं। पहले तो बरसात के ऊपर ही निर्भर रहते थे कि किस तरह की क्रॉप होगी, किस तरह की नहीं होगी। तो अब कुएं नहीं बनाए, कैनाल्स नहीं बनवाई, कुछ भी नहीं बनवाया राजा ने, तालाब नहीं खुदवाए, और भी किसी तरह से हेल्प नहीं कर रहा है। तो किसान बेचारे क्या करते? और ऊपर से फिर कभी सूखा पड़ गया, कभी फ्लड आ गया। तो इसकी वजह से ये होता था कि जब 1735 जो साल था उसके अंदर बहुत ज्यादा भुखमरी फैल गई, और ऊपर से राजा के पास भी इतने रुपए नहीं बचा था कि वो अपनी किचन के अंदर, अपनी रसोई के अंदर तीन तीन चार चार तरह की चीजें बनवा सके। और हाल इतना बुरा हो गया था उस टाइम पे कि रानियां जो थी उनको भी भूखा रहना पड़ा था। और रानियां जब भूखी रहनी पड़ी तो उन्होंने अपने जो पर्दा रखती थी वो पर्दा उठा के वो भी सामने आके राजा के विद्रोह करने लगी कि ये किस तरह का आपने अराज्य कर रखा है कि आप ध्यान भी नहीं रख सकते हो प्रजा का। तो इसकी वजह से दिक्कतें इतनी सारी हो गई कि घर के लोग ही आपस में कंप्लेन करने लगे राजा को कि आप ध्यान नहीं रख पा रहे हो प्रजा का, आप घर के लोगों का भी ध्यान नहीं रख पा रहे हो, इतने भी रुपए नहीं बचे हैं हमारे पास, तो कुछ करना चाहिए राजा को। तो राजा ने किसी तरह उस टाइम तो उनको सेटल डाउन किया, लेकिन उससे ये हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो कंडीशन थी वो इतनी बुरी थी कि मतलब रानियों के पास तक खाने की चीजें नहीं बची थी। तो प्रजा को तो भूल ही जाओ, प्रजा के बारे में तो बाद में सोचेगा राजा, पहले अपनी रानियों के बारे में नहीं सोच पा रहा है, वो अपने महल के लोगों के बारे में ही नहीं सोच पा रहा है। तो हमने अभी मतलब बहुत सारे रीजंस देख लिए हैं। तो ये सारे रीजंस ही, और ऊपर से सबसे बड़ा रीजन एक जो लास्ट हम देखेंगे वो था ब्रिटिशर। अब हो ये रहा था कि इस टाइम पीरियड में, या फिर जहांगीर के टाइम पीरियड से ही, तो जहांगीर के बाद औरंगजेब आया था, तो ब्रिटिशर्स जो थे वो इंटरेस्ट दिखा रहे थे वो उस टाइम पीरियड में कि हम इंडिया में आते हैं, इंडिया में बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत बड़ा ट्रेड का वो है साधन, यहाँ पे अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, स्पाइसेस मतलब कि काली मिर्च और सिल्क, कॉटन, ये सारी चीजें यहाँ पे अच्छी मिलती हैं, तो हम इन सारी चीजों को लेके अपने देश के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए वो यहाँ पे आ रहे थे, और जो मुगल रूलर थे उनसे परमिशन ले रहे थे कि हम यहाँ पे फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर लें क्या। तो मुगल एम्परर्स जो थे उन्होंने उस टाइम तो परमिशन दे दी थी। तो धीरे धीरे जब उन्होंने ये देखा कि मुगल एम्परर धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मुगल एम्परर के ऊपर ही कब्जा कर लिया जाए, क्योंकि अभी तो ये हो रहा है कि हमें बार बार इनसे परमिशन लेनी पड़ रही है। अगर हम ही राजा वाली उस पे आ गए पोजीशन पे तो हमें इनकी परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत चालाक थे, वो समझ रहे थे कि क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से मुगल एम्परर जो है वो वीक हो रहा है। तो उन्होंने उन सारे रीजंस का फायदा उठाते हुए उन सारी चीजों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम डिविजन जो है वो उसको और बढ़ा दिया, और उन्होंने कुछ इस तरह की पॉलिसीज ला दी जिसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी थी वो और बुरी तरह डिस्ट्रप्ट हो गई, खत्म हो गई। और उन्होंने एक दूसरे को, जो मुसलमान थे उनको हिंदू के खिलाफ भड़काया, हिंदू थे उनको मुसलमान के खिलाफ भड़काया, तो आपस में ही लड़ाई करवा के उन्होंने डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी अपनाया, जिसकी वजह से हुआ ये कि एंड ऑफ द डे ब्रिटिशर्स जो थे वो बन गए रियल एम्परर, और जो हमारे मुगल एम्परर्स थे उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। तो लास्ट में जो बहादुर शाह सेकंड था उसकी हालत इतनी बुरी थी कि उसको रंगून की जेल में बंद कर दिया गया। हमने जो टेक्स्ट पढ़े उसमें ये भी बताया गया था कि उसको एक खाट भी नसीब नहीं हुई थी, उसको बोला गया था कि हाँ भाई थोड़ी इज्जत तो बख्श दो इसको और एक खाट पे लेटा दो। तो इतना बुरा हाल हो गया था जो लास्ट मुगल एम्परर था। तो कहने को मुगल एम्परर थे वो, बल्कि उनका जो एरिया था कंट्रोल करते थे वो सिर्फ दिल्ली के आसपास तक का ही रह गया था, और उनकी जो इम्पोर्टेंस थी, वैल्यू थी, वो सब खत्म हो गई थी। और एक जो इतना बड़ा एम्पायर वो रूल कर रहे थे वो भी अब ब्रिटिशर्स धीरे धीरे अपने कब्जे में लेते जा रहे थे। तो अभी हमने जो पूरा देखा है उसमें ये देखा है कि एक तो सबसे पहले हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी वो नहीं थी, दूसरा एक नेशनल आइडेंटिटी नहीं थी, अपने आप को एक राष्ट्र से नहीं जुड़ा हुआ मानते थे लोग, तीसरा ये कि हमारे जो राजा थे वो बहुत ही एक लग्जूरियस या फिर ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे और उनका अपने कार्य पे बिल्कुल ध्यान नहीं था, और उनका ध्यान नहीं था इसकी वजह से उनके जो सबॉर्डिनेट्स थे, उनके जो नीचे काम करते थे उनका भी ध्यान नहीं था, और जो आसपास के रीजन में जिनको दे रखा था कि भाई तुम इस रीजन को संभालो, कुछ बंगाल को संभालो, कुछ अवध को संभालो, तो वो अपने आप को अपने राजा ही समझने लगे। उन्होंने समझा कि मेन जो राजा है वो तो काम पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो हम एक काम करते हैं बंगाल में ही अपना एक अलग राज्य मान लेते हैं, और सिर्फ कहने को हम कह देंगे कि हमारा जो राजा है वो मुगल है, बल्कि सारा जो कंट्रोल है वो हमारे पास ही रह जाएगा। तो सिर्फ नाम का राजा जो है वो बना के रख दिया था जो एम्परर था उसको, और जो लोकल रूलर थे वो उन्होंने अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंस दे दी थी। उसके बाद फिर बहुत जो भुखमरी थी वो आ गई थी, क्योंकि एग्रीकल्चर जो था वो ढंग से डेवलप नहीं हो पा रहा था, और जो सेंट्रल रूल था, जो मुगल रूलर थे वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे किसानों पे, बल्कि किसानों के रुपए हड़प लेते थे, उनको कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करते थे। तो इसकी वजह से काफ़ी विद्रोह भी हो गया था और लोगों के पास खाने के भी लाले पड़ गए थे, और लोगों के पास ही नहीं बल्कि राजा के पास भी इतने रिसोर्सेज नहीं बचे थे कि वो तमीज से अपने किचन के अंदर अपनी रानियों तक को रख सके। उसके बाद फिर जब ये सारी चीज़ें हुई तो ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स के साथ साथ और भी बहुत सारी कंपनियां आई थी, जैसे कि फ्रांस, डच, और हम पोर्चुगीज़ की देखते हैं, तो ये सारे आए। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो इतने चालाक थे, इतने मजबूत थे और दिमागदार थे कि उन्होंने इन सब को हरा दिया, इन सब के आर्मीज को हरा दिया। तो ये जो पुर्तगालीज, डच और ये सब जो थे, ये एक प्रॉपर सिर्फ छोटे से रीजन में सिमट कर रह गए, और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपना जो एम्पायर है वो पूरे इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश कर लिया। और इंडिया के अंदर जब उन्होंने पूरा एम्पायर इस्टेब्लिश कर लिया, तो इस एम्पायर को इस्टेब्लिश करने के बाद दे बिकम द रियल रूलर्स, और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो मुगल एम्परर थे उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया, और जो लास्ट मुगल एम्परर था वो था बहादुर शाह टू, जिसको रंगून की जेल में जब 1857 का विद्रोह हुआ उसके बाद उसको वहाँ पे बंद कर दिया, और वहीं पे उसकी डेथ हो गई, और उसके बाद फिर रियल रूल एस्टेब्लिश हो गया ब्रिटिशर्स का। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से इतने बड़े साम्राज्य का धीरे धीरे होते होते पतन हो गया, क्योंकि जो उसके सक्सेसर थे औरंगजेब के बाद के जो रूलर थे वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाए अपने आप को एक सफल राजा सिद्ध करने में, और ऊपर से औरंगजेब ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे जिसकी वजह से आगे वाली जो आने वाली पीढ़ी थी, जो आगे आने वाले रूलर्स थे, उन्होंने उसका कॉन्सिक्वेंस इतना बुरा देखा, उसका परिणाम इतना बुरा निकला कि जो इंडिया था वो एक फॉरेन कंट्री के जो रूलर्स हैं उनके हाथ में पूरा आ चुका था।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।